पृष्ठ संख्या 185, अध्याय 21, रचना विस्तार और सौंदर्य। किसी भी भाषा का उद्देश्य कुछ आशय या विचार व्यक्त करने के लिए होता है। भाषा अक्षर, वर्ण और शब्दों से बनती है। इन अक्षर, वर्ण और शब्दों से आशय युक्त वाक्य बनते हैं। जब कुछ उच्च स्तर के विचार, आशय, भावनाओं के साथ कहने की जरूरत होती है, तब उन्हें व्यक्त करने के लिए उचित भाषा का प्रयोग होता है। इस स्थिति में हम गद्य का रास्ता छोड़कर काव्य द्वारा अपनी भावना व्यक्त करते हैं। जब भाव काव्य में व्यक्त होते हैं, तब रचना में अर्था अलंकारों और शब्दा अलंकारों का प्रयोग होता है। अर्था अलंकार कवि की कोमल भावनाओं को पेश करते हैं और वे कलात्मक दृष्टि से प्रस्तुत हों, इसलिए तुक, अनुप्रास, पुनरावृत्ति, संबद्धता, उचित गतिमानता आदि का यथा योग्य प्रयोग किया जाता है। तबले पर बजने वाली विकसित और समृद्ध भाषा से काव्य की जो अनुभूति मिलती है, वह सब शब्दा अलंकार का कर्तव्य होता है, क्योंकि तबले से अर्था अलंकार की अभिव्यक्ति संभवनीय नहीं होती, लेकिन सिर्फ अक्षर और शब्दों से समर्थ भाषा नहीं बन सकती। भाषा में कर्ता, कर्म, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रियापद आदि का यथा आवश्यक उपयोग होता है। तबले में बनी हुई रचना को कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं मिल सकता और ऐसा अर्थ प्राप्त करने की कोई अपेक्षा भी नहीं रखता, क्योंकि तबले की भाषा की निर्मिति ऐसा व्यवहारिक अर्थ प्रकट करने के लिए नहीं हुई है। लेकिन समृद्ध भाषा से बनी हुई रचना से रसिक श्रोताओं को उच्च प्रकार का कलात्मक आनंद और अर्थपूर्ण सौंदर्य का आस्वादन जरूर मिलता है। जब हम तबले की बंदिश बजाते हैं, तब रसिक श्रोताओं को भाषा का सौंदर्य और कलात्मक आशय आनंद कारक रीति से प्राप्त होता है। विस्तारक्षम रचनाएं केवल रचित स्वरूप में ज्यों की त्यों नहीं बजाई जाती, उनका विस्तार किया जाता है, क्योंकि मूल रचना भले ही सुंदर और कर्ण मधुर हो, लेकिन उसके प्रस्तुतिकरण में जो सौंदर्य निर्माण किया जाता है, वह उसकी कलात्मक विस्तार क्रिया से अनुस्यूत होता है। जब हमें बंदिश का विस्तार करना होता है, तब पहले उसका सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया जाना चाहिए। इस अध्ययन के दौरान बंदिश के संदर्भ में हमें निम्नलिखित बातों पर विचार करना जरूरी है। पृष्ठ संख्या 186। अ, इस बंदिश की आकृति कैसी है? ब, इसमें नैसर्गिक खंड कितनी मात्राओं के बने हैं? क, बंदिश में नाद का स्वरूप कैसा है? ड, बंदिश में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? ई, बंदिश में कौन से शब्दों की संगति बनी है और बन सकती है? फ, बंदिश का निकास कौन से बाज से करना उचित रहेगा? ग, बंदिश में आए हुए शब्द और अक्षरों की लौट पलौट करके कौन से नए शब्द बन सकते हैं? यह सब करने के लिए तबले के विद्यार्थी वादक में आलोचक वृत्ति, संवेदनशीलता, कल्पकता, अनुमान क्षमता इत्यादि गुणों का होना लाभदायक होगा। समर्थ तबला वादक निम्नांकित सूत्रों के आधार पर विस्तारक्षम रचनाएं बजाते हैं और उनका विस्तार करते हैं। पहला, रचना में आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों को एक योजनाबद्ध क्रम से पलटू में प्रधान शब्द बनाकर विस्तार किया जाता है। उदाहरणार्थ, धाति धागे न धा तिरकिट कायदे में प्रथम धा, बाद में धाति, उसके बाद धागे न, तत्पश्चात धा तिरकिट शब्दों का क्रम से प्रयोग करके विस्तार क्रिया किया जाता है। उन शब्दों की विस्तार क्रिया इस प्रकार होगी, धातित धातित धागे न धातित धागे न धीना गेन, धातित का विस्तार, धागे न धागे न धातित धागे न धातित धागे न का विस्तार इत्यादि। दूसरा, कायदे के शब्दों की लौट पलौट करके नए शब्द बनाकर विस्तार करते हैं। इसी कायदे में धातित धागे न धातिरिकिट शब्द का नया स्वरूप धातिरिकिट धातित धागे न या धागे न धातित धातिरिकिट के रूप में करके कायदे का विस्तार करने से उसकी खूबसूरती बढ़ती है। इसके लिए कलाकार में कल्पकता एवं सृजनशीलता होनी चाहिए। हर रचना की तरफ सूक्ष्मता से देखकर उसे बदले हुए शब्दों के साथ देखने की क्षमता कलाकार में होनी चाहिए। उदाहरणार्थ, धातित धागे न धातिरिकिट पहला और आगे धातित धागे दीना केना है ही, धातिरिकिट धाति धागे न दूसरा, धातित धातिर किड धागे न तीसरा, धागे न धातिरकिड धाति चौथा इत्यादि। सूचना, पूर्ण कायदा धाति धागे न धातिरकिट धाति धागे दीना केना है, लेकिन सुविधा के लिए मैंने कायदे का आधार रूप लिख दिया है, पृष्ठ संख्या 187। तीसरा, जब हम तबले की अपनी स्वतंत्र भाषा के अस्तित्व का दावा करते हैं, तब हमें यह भी सोचना और मानना चाहिए कि तबले की यह भाषा मानवी भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। जिस दृष्टि से मानवी भाषा विराम चिन्हों से बनती है, उसी दृष्टि से तबले की भाषा में उचित शब्दों और अक्षरों पर स्वअल्प विराम अर्ध विराम देकर तबला बजाने से हमें यह अनुभूति प्राप्त होती है कि उक्त वादन कलात्मक रीति से नैसर्गिक रूप में पेश हो रहा है। उदाहरण के लिए, धातित धातित धाधा तीट धागे दीना कीना, इस कायदे को धा धातित धाधा तीट धागे तीना कीना के रूप में बजाने से रचना को नया रूप मिलता है। और अगर धा का बायां दबाव घिसाव के तंत्र से बजाया गया होगा तो मानवी श्वास उच्छावास की अनुभूति की एक झलक भी रसिक श्रोताओं को मिलती है। धातित धागे न धातिरिकिट धातित धातिरिकिट बराबर चार मात्राएं, धा धाति धागे न धाति धागे धीना गीना चार मात्राएं, धा धा धाति धागे न दो मात्राएं, धा धातिरिकिट एक सही एक बटे दो मात्राएं। चौथा, कायदे की लंबाई कभी छोटी होती है तो कभी बड़ी। छोटे कायदे में विस्तार करने से कभी कभी अपेक्षित सौंदर्य निर्मिति नहीं होती। ऐसी स्थिति में घरानेदार तबला वादक इन छोटे कायदों को दोहरा या चौहरा बना लेते हैं, कायदे का आकार दुगुना चौगुना करते हैं और बाद में उसका विस्तार करते हैं। ऐसे चौहरे कायदे में हर पलटे से पहली परत में परिवर्तन किया जाता है और दूसरी परत कायदे के रूप में रखी जाती है। ऐसा करने से उसी रचना के बड़े रूप में कायदा सुनने में अधिक आनंद प्राप्त होता है। छोटा कायदा अपने मूल रूप में कम प्रभावशाली होता है, क्योंकि ऐसे कायदों में चार बार कायदे की खाली भरी बजाने के बाद एक बार सम आती है। इससे सम का महत्व कम हो जाता है। हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि श्रोताओं को संगीत में सम पर आने का आनंद ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, और वह आनंद देने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। धाधा तिरकिट धाधा दिन्ना कायदा ठेके की धीमी लय में एक मात्रा में भरी और एक मात्रा में खाली में पूरा होता है। इस कायदे के इतने छोटे स्वरूप में चाहे कितने भी अच्छे पलटे बजाए जाएं, तो भी यह कायदा सुंदर नहीं लगेगा। इसलिए छोटे कायदे को बड़ा करने का और बाद में उसके पलटे बनाने का उस्तादों का तरीका ऐसा था। पृष्ठ संख्या 188। धाधा तीत धाधा दिन्ना कायदा दोहरा या चौहरा बजाकर उसके पलटे इस प्रकार बजाना। पहला, धाधा तीत धा तीत धा तीत तीत धाधा तीत धाधा तीत धा तीत धाधा धा तीत धाधा दिन्ना चौहरा। दूसरा, धा तीत धाधा तीत तीत धाधा तीत धाधा तीत धा धा तीत तीत धाधा तीत धाधा दिन्ना। यही विचार लंबे कायदे के बारे में उल्टे स्वरूप में प्रयुक्त बन सकता है। उदाहरण, धागे न तिन धा धाग के नक धिन। इस लंबे कायदे के कुछ लंबे पलटों के बाद दिंग दीना गेना धागे त्रक तिंग तीना केना, इस छोटे स्वरूप में पलटे करने से ही ऐसे कायदे का सौंदर्य और प्रभाव बढ़ता है। पांचवा, इस प्रकार के कायदे के विस्तार में आकार छोटा बड़ा करने के लिए घराने की तालीम और उस पर चिंतन की आवश्यकता होती है। कभी कभी विशेषतः अजराड़ा बाज में कायदे के स्वरूप में और उसके विस्तार में भी कायदे के बाहर के शब्द लेकर कलात्मक विस्तार किया जाता है। उदाहरण के लिए, धात्रक धीनगिन धागेत्रक धीनगिन धागिन धात्रक धीन धागेत्रक तीनकिन ताकेतिट ताकेत्रक तीनकिन ताकेतिट धागेन धात्रक धीन धागेत्रक धीनगिन। इसी प्रकार के कायदे के विस्तार में अलग शब्दों का उपयोग सौंदर्य निर्मिति के लिए खाली में किया जाता है, और अब चार परतों में कायदे का विस्तार होता है। अजराड़े के उस्ताद हर परत में अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं और विस्तार को संपूर्णतः एक नया रूप देते हैं। इस ढंग से प्रभावी विस्तार करने के लिए कलाकार में सृजनशीलता, वैचारिक लचीलापन, नवीनता के प्रति आकर्षण और प्रयोगशीलता आदि गुण होने चाहिए तथा उनका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, धागे तित क्रधे तित धागे नागे धीना गीना क्रधे तित धागे नागे दीना केना तित क्रते तित ताके नाके तीना कीना क्रधे तित धागे नागे धीना गीना। पृष्ठ संख्या 189। छठवां, कायदा जब पेश किया जाता है तब धीमी लय में कायदे की बंदिश बजाई जाती है, और साधारणतः कायदे की प्रस्तुति उस लय की दुगुनी में होती है। लेकिन दुगुन में बजाने से पहले समर्थ वादक उसी रचना को ड्योढ़ी लय में पेश करते हैं। जब यह रचना केवल ड्योढ़ी लय में पेश की जाती है तब कलाकार की लयकारी का प्रदर्शन होता है और इसमें सुंदरता कम और व्याकरण ज़्यादा होने की संभावना पैदा होती है। लेकिन कुछ प्रतिभावान कलाकार उसी ड्योढ़ी की बंदिश में थोड़ा सा फर्क करके अच्छी तरह के कलात्मक विस्तार के जरिए अपना तबला वादन पेश करते हुए उसमें विलक्षण सौंदर्य निर्माण करते हैं। ऐसा विस्तार करते समय वे कुछ मात्राओं में चतुरस्र रूप, कुछ मात्राओं में तिस्र रूप, कुछ चतुरस्र रूप, फिर तिहाई, ऐसे मार्ग से उस बंदिश को नए रूप में पेश करते हैं। इस तरह के प्रस्तुतिकरण के लिए कलाकार में सौंदर्य शक्ति और लयकारी पर अधिकार, इन दो गुणों का होना जरूरी है। उदाहरणार्थ चतुरस्र का कायदा धीमी लय में धातित धातित धाधातित धागे दीना केना। तीसर जाति में एक दो धातित धातित धाधातित धागे तीना कीना, तीन मात्राएं। एक दो धाधातित धागे तीना कीना, दो मात्राएं। एक दो धातीट धातीट धाधातीट धागे तीन कीन, तीन मात्राएं। इसके बाद चतुरस्र जाति में मूल कायदा दुगुन में बजाया जाता है और उसका विस्तार होता है। सातवां, ताल और ठेके के कुछ खंड होते हैं और उस ताल में बनाई हुई बंदिश के भी खंड होते हैं। बंदिश को आकार देने का काम खंड करता है, किंतु खंड में आने वाले शब्द और उनमें निर्धारित विश्रांति काल खंड को आकार देते हैं। जब एक खंड या दो अलग अलग खंडों में अंतर्भूत शब्दों का कलात्मक पुनर्गठन किया जाता है तब नए खंड की निर्मिति हो जाती है और उसके विस्तार के नए रास्ते निर्माण होते हैं। इस तरह से विस्तार करने से श्रोताओं को आभास होता है कि वे कोई नई रचना ही सुन रहे हैं। इस ढंग से विस्तार करने के लिए कलाकार में कल्पना शक्ति, सृजनशीलता और तबले की भाषा पर प्रभुत्व होना जरूरी है। उदाहरण के लिए घीना धागेन धात्रक धागेन धात्रक धाति धा घीन तीना कीन धात्रक धाति धा घीन धाति घीन धात्रक धाति धा घीन तीना कीना। और काल, ये चार चार मात्राओं के चार खंड हैं और विस्तार भी प्रायः इसी आकार के खंडों से ही होता है। इस रचना में एक कलात्मक नवीनता और निर्माण करने के लिए विस्तार क्रिया में हम इस रचना के शब्दों और प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना इस ढंग से पेश कर सकते हैं। घीना धागेन धात्रक धातिधा घीन धीनाकीन, छह मात्राएं। धात्रक धातिधा घीन घीना गीन, चार मात्राएं। घीना धागेन धात्रक धातिधा घीन तीनाकीन, छह मात्राएं। आठवां, विस्तारक्षम रचना का प्राण खाली भरी की प्रस्तुति में निहित होता है और कहां पर खाली का प्रयोग हो यह ताल के स्वरूप पर निर्भर होता है। इसके अलावा घराने की एक शिक्षा पद्धति होती है। इस पद्धति से हम जान जाते हैं कि कौन सी रचना की खाली कहां बजाई जानी चाहिए। सामान्यतः खाली भरी अपेक्षित जगह पर यांत्रिक पद्धति से बजती है। खाली का इस तरह से बजना बिल्कुल सही होता है, लेकिन जब खाली भरी हर दफा अपेक्षा पूर्ति करती है तब वादन का प्रभाव थोड़ा सा कम होने लगता है। इस स्थिति में अगर कलाकार ने इस सांकेतिक यांत्रिक खाली भरी के प्रयोग में सुखद धक्का देकर बदले हुए शब्दों के स्वरूप में खाली भरी बजाई तो वादन में यकायक चैतन्य निर्माण होता है। उदाहरण, हम आगे दो तीन रचना प्रकार देखेंगे। पहला, धातिट का कायदा। इस कायदे का एक पलटा नीचे दिया गया है। धातिट धातिट धाधा धातिट धाधातिट धातिट धातिट धाधातिट धागे तीना कीन तातिट तातिट ताता तातिट ताता तातिट धातिट धातिट धाधातिट धागे धीना कीन। यह कायदा जब उस्ताद इनाम अली खां बजाते थे तब खाली भरी में इस प्रकार फर्क करते थे। भरी धातित धातित धाधा धातित ताता तातित और कायदा। खाली तातित तातित ताता तातित धाधा धातित और कायदा। दूसरा, किसी बड़े रचनाकार ने एक खाली भरी कल्पना को छोटा सा धक्का कायदे की रचना में ही दिया है। वह रचना इस प्रकार है, धागे न तिन न धा धा घेघे नक धिन। इस कायदे में पारंपरिक खाली भरी के नियम के अनुसार रचना और पूरा कायदा धागे न धिन धा धा घेघे नक धिन इस रूप में बजनी चाहिए थी, लेकिन पहले चार मात्राओं के भरी अक्षरों में धिन्न की जगह तिन्न को सोचकर खाली भरी संकल्पना को नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। पृष्ठ संख्या 191। कभी कभी कायदे की मूल रचना में जो शब्द होते हैं उनके अलावा उनके विस्तार में कुछ ऐसे नए शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कायदे के मूल शब्दों को उलट पलट कर और आगे पीछे करके बनाए जाते हैं। अगर सूत्र विस्तार किए बिना इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द प्रयोग कायदे का नियम तोड़कर किया जाने से गलत माना जाएगा। लेकिन जब अच्छी तरह से सोच समझकर योजनाबद्ध विस्तार में प्रयत्न पूर्वक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे वादक कलाकार की प्रतिभा की अभिव्यक्ति माना जाता है। उदाहरणार्थ, दिल्ली घराने का एक छोटा कायदा नीचे दिया जाता है, घीना तीट धातिरकिट धागे न धागे धीना कीना और खाली। इस कायदे का विस्तार करते समय दिल्ली घराने में इसका नया ही रूप निर्माण हुआ जो इस प्रकार है, घीना तीट घीना धागे धीना गीन तीट घीन धातिरकिट धागे न तीट घीन धागे तीना कीन। इसी रीति से धातिट कायदे का विस्तार करते हुए कलाकार धागे न धातिट धाधा तीट धागे तीना कीन इस पलटे पर पहुंच सकता है और इसे नया कायदा मानकर पेश भी कर सकता है। दसवां, उस्ताद हबीबुद्दीन खां साहब जैसे प्रतिभावान कलाकार कायदे के विस्तार में एक ऐसा अक्षर प्रयुक्त करते थे जिसमें नवीनता महसूस होती थी। वास्तव में वह अक्षर कायदे के गणित को बिगाड़ता है और लय को डगमगाता है, लेकिन उच्च कोटि की तैयारी और हाथ की सफाई के कारण वे बोल हिसाब से गलत होते हुए भी अच्छे लगते हैं। धागे न ती ट धागे न तीट धागे तीना की न। यह चतरस्र जाति का कायदा तैयारी में हबीबुद्दीन खां साहब धागे न तीट धागे न तीट धागे न तीना की न इस तरह बजाते थे। दिल्ली घराने के कलाकार भी घीना गेतीट घेना घीनाग धीन दीना केना यह सवा चार मात्राओं की रचना चार मात्राओं में बजाते थे। इसी प्रकार उस्ताद हबीबुद्दीन अपना प्रसिद्ध मिस्र जाति का कायदा धागी न धाग धी न धागे न धीट धीट धागी न धाग घी न धागे न तीन किन इस रूप में धीट धीट धागे न धाग धी न धीट धीट इस शब्द प्रयोग को इनके पलटों में दो मात्राओं में कलात्मक रीति से बजाकर अनोखा सौंदर्य निर्माण करते थे। पृष्ठ संख्या 192। 11वां कायदे का अंतिम शब्द स्वरमय होता है और सर्वसाधारणतः अंतिम अक्षर न आता है। जब इस अंतिम शब्द में सोच समझकर कुछ ऐसा फर्क किया जाता है जिसमें रचना का वजन और रूप बदल जाता है और विस्तार में जब इस कल्पना सूत्र का कलात्मक उपयोग किया जाता है तब रचना बहुत ही सुंदर लगती है। उदाहरणार्थ धाती धागे धीना गीना में अंतिम न की जगह धा का प्रयोग किया जाए तो वह रचना दोहरी हो जाती है बल्कि उसे नया ही रूप मिलता है। वह रचना अब ऐसी बजेगी धाती धागे धीना गद्धा धाती धागे तीना कीना और काल ब इसी रचना के अंतिम दो अक्षर गीना है। इस जगह पर हम धाधा या धाती लगाएंगे तो वह रचना ऐसी बजेगी धाती धागे धीना धाती धाती धागे धीना गीना। 12वां तबले में किसी भी रचना में कुछ शब्द या शब्द प्रयोग व्यंजन प्रधान होते हैं। उदाहरण के लिए तीट तिरकिट धीर धीर त्रक इत्यादि। तबले पर इन बोलों के निकास में गूंज रहित कठोर ध्वनि की निर्मिति होती है। वादक अपनी सौंदर्य दृष्टि से संस्कार से और निकास पद्धति से उन बोलों को कठोर या मुलायम रूप में पेश करता है। इन तिट तिरकिट आदि शब्दों को कठोर रूप में पेश करने से भावनिक तीव्रता का प्रभाव पैदा होता है। रसिक श्रोताओं को उनके अच्छे प्रदर्शन से कलात्मक आनंद जरूर मिलता है। तिट तिरकिट के लगातार प्रयोग से एक भावनिक तनाव श्रोताओं के मन में पैदा होता है। ऐसा तनाव पैदा करना कलाकार का उद्देश्य भी होना चाहिए लेकिन ऐसे कलात्मक तनाव की भी सीमा होनी चाहिए। तनाव की निर्मिति के बाद उससे मुक्ति पाना भी जरूरी होता है। तबला वादन में यह काम गूंजयुक्त स्वरमय शब्द करते हैं। इसीलिए हमें पेशकार और कायदे की रचनाओं में व्यंजन प्रधान कठोर शब्द और स्वरमय अंत्य शब्दों का प्रयोग एक साथ किया गया दिखाई देता है। जब हम कायदा बजाते हैं तब इन दोनों का शब्द प्रयोग उलट पुलट के साथ होता रहता है लेकिन जब बड़े कलाकार इन कायदों का विस्तार करते हैं तब वे निश्चय पूर्वक व्यंजन प्रधान शब्दों से भावनिक कलात्मक तनाव निर्माण करते हैं। पृष्ठ संख्या 193। और उसके बाद स्वरमय शब्दों के प्रयोग से उस तनाव से श्रोताओं को कलात्मक राहत देते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं से रसिक श्रोताओं को उच्च स्तर का आनंद प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए कायदा का यह पलटा देखिए धागे तीट क्रधा तीट तीट क्रधा तीट तीट क्रधा तीट धागे तीट धागे नागे धीना गेना धागे नागे धीना धागे नागे धीना धागे नग धीना गीना धागे तीट धागे नागे दीना केना। काल, पेशकार, कायदा या रेला एक कविता होती है। इनमें आवश्यक जितने शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इन शब्दों का चुनाव सोच समझकर किया जाता है। इनमें व्यंजन प्रधान शब्द होते हैं, अंत्य शब्द होते हैं और अंत्य स्वरमय शब्दों का तुक होता है। कई स्थानों पर अंत्य शब्द के पहले शब्द का भी तुक होता है, जिसे हम उपांत्य अनुप्रास कह सकते हैं। अक्षरों और शब्दों की पुनरावृत्ति मूल कायदे में या उसके विस्तार में होती है, जिससे अनुप्रास अलंकार पैदा होता है। विस्तार क्रिया में शब्दों की तोड़ मरोड़ प्रायः नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी तोड़ मरोड़ करनी ही पड़ी तो वह कलात्मक ढंग से होनी चाहिए और इसके फलस्वरूप जो नए शब्द बनेंगे वे मूल कायदे की प्रकृति के अनुसार ही बनने चाहिए। और तबला वादक को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कायदे की शक्ल और आत्मा को ठेस न पहुंचे। कायदे के पलटे इस तरह से होने चाहिए कि एक कायदे में से पहला पलटा, उसमें से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, इस प्रकार पलटे विकसित होने चाहिए। गणित और यांत्रिकता या संगणक की मदद से पलटे चाहे जितने बन सकते हैं, लेकिन वे अगर कलाहीन हो तो उनसे कोई फायदा नहीं। इस अध्याय में विस्तार करने के जो तरीके बताए गए हैं, उन सब का प्रयोग एक ही कायदे के प्रस्तुतीकरण में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, न ही होना भी चाहिए। अनेक बड़े बड़े कलाकारों ने अपनी कला के प्रस्तुतीकरण में जिन अलग अलग तत्वों से विस्तार किया है और जो मेरी समझ में आए, उन सब का संकलन मैंने इस अध्याय में किया है। हाँ, एक बात निश्चित है कि हर रचना को प्रस्तुत करने की अपनी अपनी एक लय होनी चाहिए। अगर कायदे को रेले जैसी गतिमान लय में बजाया गया तो गति सौंदर्य का आनंद तो मिल सकता है, लेकिन भाषा सौंदर्य, शब्द सौंदर्य, अक्षरों के श्वास उच्छावास, विस्तार क्रिया में बनते जाने वाले रचनाओं के नए नए आकार, इन सब का आनंद श्रोता नहीं ले पाएंगे। इसीलिए पेशकार को धीमी लय में, कायदे को मध्य लय में और रेले को द्रुत लय में सुनने में मजा आता है। इन रचनाओं के प्रायोगिक स्वरूप को मध्य नजर रखते हुए अपने गुरु का मार्गदर्शन पाकर बड़े बड़े प्रतिभावान कलाकारों के कैसेट सुनकर, उन पर सोचकर वादक कलाकारों को विस्तार के अनुरूप पलटे बजाने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कलाकार के हाथ की कुछ विशेष ताकत होती है, हाथ की कुछ मर्यादाएं भी होती हैं। इसीलिए अपनी ताकत और मर्यादाओं को ध्यान में रखकर अपने हाथ की प्रकृति के अनुरूप रचनाएं बजाना और उनका विस्तार करना उचित होगा। पृष्ठ संख्या 194। वेद संहिता गायन में विस्तार क्रिया और तबला वादन में रचना की विस्तार क्रिया। रचना के विस्तार के बीज वेद संहिताओं की उद्गम पद्धति में पाए गए हैं। वेद संहिताएं दो प्रकारों से गाई जाती हैं, पहला निर्भुज और दूसरा प्रतीर्ण। निर्भुज याने संहिताओं के पद जैसे हैं, वैसे ही गाना और प्रतीर्ण याने संहिताओं का विस्तार करके गाना। संहिताओं का विस्तार करने की 10 सीढ़ियां बताई गई हैं। यह विस्तार पद, क्रम, जटा, घन, माला, शिखा, लेखा, ध्वज, दंड और रथ, इन 10 क्रमों से होता है। इस विस्तार पद्धति की कल्पना स्पष्ट हो इसलिए वेद ऋचा एवं उनकी गान पद्धति का एक उदाहरण इस प्रकार है। अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विज्यम मूल ऋचा पदपाठ। अग्निम इले इले पुरोहितम पुरोहितम यज्ञस्य यज्ञस्य देवम देव ऋतुज्वम क्रमपाठ। अग्निम इले अग्निम अग्निम इले इले पुरोहितम पुरोहितम इले इले पुरोहितम पुरोहितम यज्ञस्य यज्ञस्य पुरोहितम इत्यादि जटापाठ। ऊपर दर्शाए हुए विविध पाठों का अध्ययन करने पर यह बात ध्यान में आ जाती है कि तबले के कायदे के बल बजाते समय भी इसी प्रकार से शब्दों की पुनरुक्ति एवं उलट पुलट की जाती है। यहाँ मैंने वेद ऋचाओं का गायन और तबले के कायदों की विस्तार क्रिया इनके बीच में पाए गए साम्य को दिखाया है, अर्थात इसी प्रकार की शब्दों की पुनरुक्ति एवं उलट पुलट गायन के स्वर अलंकारों में भी पाई जाती है। ऊपर बताई गई संस्कृत की संहिताओं की विस्तार क्रिया के पद क्रम पाठ आदि का स्वरूप देखने पर कायदे के विस्तार में निम्नलिखित साम्य हमें सहजतया अनुभूत होते हैं। जैसे पृष्ठ संख्या 195 धाति धागे नाधा तिरकिट धाति धागे तीना कीना। कायदे के पलटे देखें। पहला धाति धागे ना धागे ना धागे ना धा तिद्धा तिरकिट और आगे कायदा। दूसरा धाति धागे न धा तिरकिट धा तिरकिट धा तिद्धा गेना और आगे कायदा। धा तिरकिट धा तिरकिट धाती धागे न धा तिद्धा गेना और आगे कायदा। चौथा धागे न धा तिरकिट धाती धाती धातिर किट धागे न। उपर्युक्त पलटे और ऋचाओं के पाठ पद्धति में स्थूल रूप में पर्याप्त साम्य है, अर्थात यहाँ मुझे यह सूचित भी नहीं करना है कि तबले के पलटे निर्माण करने की पद्धति वेद की ऋचाओं की उद्गान पद्धति में से निर्माण हुई है, किंतु इतना तो निश्चित है कि साम गायन में से ध्रिपद शैली विकसित हुई। उक्त ध्रिपद शैली के पाठ पद्धति में से विविध स्वर अलंकार पैदा हुए। इन स्वर अलंकार का जब गायन की क्रिया में प्रस्तुतीकरण शुरू हुआ तब यथोचित साथ संगत करते समय स्वर अलंकार की प्रतिकृतियां पखावज तबले की साथ संगत के दौरान प्रस्तुत करने की पद्धति शायद रूढ़ हो गई होगी। इस प्रक्रिया में पाठ पद्धति के सिद्धांतों का पखावज वादक तबला वादक कलाकारों के मन में जाने अनजाने बीजारोपण होता गया होगा और वह सुप्ता अवस्था में विचारवान निर्मितिकार कलाकारों के मन की गहराई में जाकर स्थिरता के साथ जम गया होगा और जब वे कलाकार रचनाओं की विस्तार क्रिया में प्रयत्नशील होते गए तब सुप्ता अवस्था के ये बीज सक्रिय होकर उक्त कलाकार की विस्तार प्रक्रिया में मददगार सिद्ध हुए होंगे। इसी कारण से उक्त साम्य हमें दिखाई देता है, अर्थात यह एक मात्र तर्क है, अनुमान है, इस संबंध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।